بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا گن، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، سدیو کی بھانتی کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں سے کر رہے ہیں۔ آج آپ سورہ دہر کی تیسری سے لے کر گیارہویں آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں محمد صدیق منشاوی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہم نے منوشے کو مارگ دکھا دیا ہے، اب چاہے وہ کرتگ رہے یا اکرتگ، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نشچے ہی پھلے لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس میں کافور کی بھلی مہک کا مشرن ہوگا۔ وہ ایک سروت ہوگا جسے اللہ کے وشیش بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اسے بہا کر لے جائیں گے۔ ایشور کے یہ بندے منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا دنڈ ویاپک ہوگا، اور وہ کھانے کی چاہت و آوشکتا رکھنے کے باوجود اسے محتاج، اناتھ اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم تو کیول اللہ کی پرسنتا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، انیتھا نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ آبھار۔ ہمیں تو اپنے پالنہار کی اور سے ایک ایسے دن کا بھے ہے جو اتیانت کرور اور لمبا ہوگا۔ تو ایشور نے انہیں اس دن کی کڑائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی و پرسنتا پردان کی۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شوتاؤ، میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے pastoday.com/hi اور واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 00989035065492۔ شوتا، آج بدھوار ہے، خرداد کی 4، شوال کی 25 اور مئی کی 25 تاریخ۔ اس سمے کی سبھا میں آپ سب سے پہلے سماچار سنیں گے، جس کے بعد انمول باتیں کارکرم پرستت کیا جائے گا، پھر آپ راجنیتک چرچا کا کارکرم سنیں گے اور پھر شوریہ گاتھا سبھا کا انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ یہ ہے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ لیجیے شروع سنیے انتراشٹریہ سماچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ اسلامک کرانتی کے نیتا نے کہا ہے کہ بڑی طاقتوں کی دشمنی کے باوجود ایران سفلتا کی راہ پر آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ بھارت میں الگاوادی نیتا یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان میں پورو پردھان منتری عمران خان کا مارچ شروع ہو گیا ہے۔ اویدھ ادھیکرت فلسطین میں حالات یتھاوت تناؤپورن ہیں۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ اسلامی کرانتی کے نیتا آیت اللہ العظمی خامنئی نے دیش کے سانسدوں سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ انقلابی بننے سے زیادہ اہم انقلابی باقی رہنا ہے۔ بدھوار کو امام خمینی امام بارگاہ میں 11ویں سنسد کے سدسیوں سے ملاقات میں سپریم لیڈر نے 8 ورشیہ پوتر پرتیرکشا کے دوران خرم شہر کی آزادی کی گھٹنا کا الیکھ کرتے ہوئے خرم شہر کی آزادی کو ایک کڑوے سمیکرن کے مدھر سمیکرن میں بدل جانے کی گھٹنا بتایا۔ اسلامی کرانتی کے نیتا نے سمیکرن کے اس بنیادی بدلاؤ کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ کٹھن، جٹل اور کٹو پرستھتیوں سے گزر کر فتح اور سفلتا تک پہنچنے کا اصول جہادی کریا کلاپ، پختہ ارادہ، نت نئی شیلی پر کام، تیاگ، دیر کالنگ نظر اور سب سے بڑھ کر نشٹھا اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ آیت اللہ العظمی خامنئی نے سنسد کو دیش کی پربندھن ویوستھا کے مکھیہ استمبھوں میں سے ایک بتایا اور بل دے کر کہا کہ کشمتاؤں اور خامیوں کی صحیح پہچان بڑی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ دشمن اپنی طاقت سے زیادہ ہماری غلطیوں سے امید لگائے ہوئے ہے۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے ایران کے وشال کھیترفل، بڑی آبادی، پرانے اتہاس اور وویدھ جلوایو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران جیسی پوزیشن رکھنے والے دیش کا سنچالن بہت مہتوپورن ہے اور دنیا کے ورتمان حالات کے مد نظر سوابھاوک روپ سے کٹھن اور پیچیدہ ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ البتہ دنیا کے ورتمان حالات میں سارے دیشوں کے لیے کٹھن حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا نے دنیا کے وشیش ورتمان حالات کی وجہوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بڑی طاقتوں کے بیچ دشمنی بھرا مقابلہ،
परमाणु ताकतों के एक दूसरे को धमकियां, लगातार बढ़ती सामरिक गतिविधियां, खतरे और यूरोप के करीब जंग जो दुनिया के गंभीर जंगी इलाकों में गिना जाता है, एक बीमारी का बहुत व्यापक पैमाने पर फैल जाना और विश्व स्तर पर खाद्य संकट वे कारण हैं जिनकी वजह से दुनिया में खास हालात पैदा हो गए हैं और इन हालात में मुल्कों के लिए संचालन का विषय काफी सख्त और पेचीदा हो गया है। इस्लामी क्रांति के नेता ने कहा कि दुनिया के इन खास हालात के साथ ही ईरान धार्मिक लोकतंत्र का नमूना पेश करने और इसके नतीजे में वर्चस्ववादी व्यवस्था के सारे समीकरण बिगड़ जाने के कारण दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ अलग अलग पहलुओं से सतत चुनौतियों का सामना कर रहा है। आतंकवादियों द्वारा शहीद किए गए पवित्र स्थलों के रक्षक IRGC के कर्नल शहीद सैयद खुदाई के अंतिम संस्कार में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें जमकर इसराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगे। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को तेहरान में हजारों की संख्या में नम आंखों से पवित्र स्थलों के रक्षक कर्नल शहीद सैयद खुदाई को अंतिम विदाई दी गई। शहीद खुदाई ज़ायनी तत्वों और साम्राज्यवादी शक्तियों का समर्थन प्राप्त आतंकवादियों के हाथों शहीद होने वाले IRGC के जाले शहीद खुदाई के अंतिम संस्कार में शामिल लोगों ने जहां साम्राज्यवाद की चूलें हिला देने वाले नारे लगाए, वहीं शहीदों के प्रति अपनी वफादारी के संकल्प को भी दोहराया। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को NIA की एक अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले 19 मई को अदालत ने यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया था, लेकिन सजा सुनाने के लिए 25 मई का दिन निर्धारित किया था। यासीन मलिक के वकील उमेश वर्मा ने बताया कि दो अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा मिली है। इसके अलावा 10 मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ में चलेंगी। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्हें अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। वो आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सजा को लेकर होगी, दोषी सिद्ध होने को लेकर नहीं। यासीन मलिक पर देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, आपराधिक साजिश रचने और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने जैसे आरोप लगाए गए थे। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष थे। इस संगठन ने 1989 और उसके कुछ वर्षों बाद तक मूल रूप से कश्मीर घाटी में सशस्त्र लड़ाई का नेतृत्व किया था। यासीन मलिक जम्मू और कश्मीर को भारत और पाकिस्तान दोनों से आजादी दिलाने की बात करते हैं। मलिक के संगठन ने 1994 में बंदूक छोड़ दी और कश्मीर की आजादी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष की घोषणा की। भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमरीका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। एक बयान में सरकार ने कहा कि चीनी मौसम 2021-22 के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने 1 जून से चीनी निर्यात को विनियमित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने हकीकी आजादी नाम का मार्च शुरू कर दिया है। बहुत बड़े जैन सैलाब और कई किलोमीटर लंबे गाड़ियों के कारवां के साथ इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पंजाब और फिर वहां से गुजरकर इस्लामाबाद पहुंचने का इमरान खान का कार्यक्रम है। अपने समर्थकों की भारी संख्या को इमरान खान ने संबोधित किया और उन्हें इस्लामाबाद की तरफ आगे बढ़ने और रास्ते में प्रशासन की ओर से लगाई गई रुकावटें हटा देने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले एक वीडियो संदेश में इमरान खान ने कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जब तक वे चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं कर देते और सरकार खत्म नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इमरान खान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों से खास तौर से अपील की है कि वो बाहर निकलें। इमरान खान का कहना है कि इस मार्च में शामिल होने वाले लोग चुनाव की तारीख की घोषणा होने तक इस्लामाबाद में ही रहेंगे। فلسطینی پرتیرودھک بلوں نے منگلوار رات ایک بیان جاری کر کے اویدھ زائونی شاسن کو چیتاونی دی ہے کہ اویدھ زائونی کالونی واسیوں دوارا ہر دن مسجد الاقصی کا کیا جانے والا انادر وہ کسی بھی استھتی میں سہن نہیں کریں گے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی پرتیرودھک بلوں نے اپنے بیان میں اسرائیل کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب یہ اچھی طرح جان لے کہ قدس کی تلوار ابھی میان میں نہیں گئی ہے۔ بتا دیں کہ رویوار کو اویدھ زائونی شاسن کی ایک عدالت نے اپنے ایک آدیش میں اویدھ زائونی کالونی واسیوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ مسجد الاقصی کے پرانگڑ میں اپنے دھارمک سنسکاروں کو پوری آزادی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں۔ فلسطینی سوتروں نے پوروی نابلس آتنکی اسرائیلی سینکوں کے ہاتھوں ایک فلسطینی یوک کے شہید ہونے کی سوچنا دی ہے۔ وہیں دوسری اور اویدھ زائونی کالونی واسیوں نے آتنکی اسرائیلی سینک کے سمرتھن سے ایشوری دوت حضرت یوسف پیغمبر کے مقبرے پر حملہ کیا۔ فلسطینی سماچار ایجنسی معاہ کی رپورٹ کے مطابق ویسٹ بینک کے اتر میں استھت پوروی نابلس میں آتنکی اسرائیلی سینکوں نے 16 ورشیے فلسطینی یوک غیس رفیق یامین کو بڑی بے رحمی کے ساتھ گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ اویدھ زائونی شاسن کے قبضے والے حیفا بندرگاہ پر ایک ایندھن بھنڈار میں بھیشن آگ لگ گئی۔ ستھانیہ میڈیا نے بتایا کہ سونول آئل پرتشٹھان کے ایک بھنڈار میں پھر آگ لگ گئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگ لگتے ہی چاروں طرف ہڑکم مچ گیا اور بڑی مشکل سے دمکل وبھاگ نے اس پر قابو پایا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حیفا میں اس طرح کی گھٹنائیں لگ بھگ روز ہو رہی ہیں، جسے دیکھتے ہوئے یہاں رہنے والے زائنیوں کو لگتا ہے کہ ایندھن کے بھنڈار اس بندرگاہ سے دور کر دیے جانے چاہیے۔ اس سے پہلے حیفا کے کریات حائم علاقے میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ یمن کے سشست بلوں نے پچھلے ایک سپتاہ کے دوران سعودی گٹھ بندھن کے تیسرے آدھونک جاسوسی ڈرون ویمان کو آسمان میں ہی نشٹ کر دیا۔ الارم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی سینا کے پروکتا یحیٰ سری نے بتایا کہ جس ڈرون ویمان کو یمنی جیالوں نے آسمان میں ہی دھوست کیا ہے وہ سعودی عرب کی وایو سینا کا ہے۔ یمنی سینا کے پروکتا نے بتایا کہ یمن سعودی عرب سیما پر استھت نجران علاقے میں سعودی عرب کی وایو سینا کا آدھونک ڈرون ویمان یمنی جیالوں کی جاسوسی کر رہا تھا، تبھی یمنی سینا نے زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میسائل سے سعودی عرب کے آدھونک ڈرون ویمان کو آسمان میں ہی تباہ کر دیا۔ امریکہ کے پورو ودیش منتری ہینری کیسنجر کا بیان بہت چرچا میں ہے، جس میں انہوں نے پشچم کو چیتاونی دی ہے کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی سیناؤں کو شکست دینے کی یوجنا دماغ سے نکال دے، کیونکہ آگے چل کر یورپ کی سرکشا پر اس کا بے حد خطرناک اثر پڑے گا۔ برطانیہ اخبار ٹیلی گراف میں چھپنے والی رپورٹ کے انوسار کیسنجر نے داووس میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ سامنے موجود لمحوں کے بہاؤ میں آ کر روس کی پوزیشن کو بھلا دینا بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ کیسنجر نے کہا کہ روس 400 سال تک یورپ کا بنیادی حصہ رہا ہے اور سنکٹ کے سمے اس نے ہمیشہ شکتی کا سنتولن قائم رکھا ہے۔ یہ پرانا رشتہ یورپی نیتاؤں کے دماغ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس سجھاؤ پر پرتکریا دیتے ہوئے یوکرین کے راشٹرپتی زیلنسکی نے کہا کہ روس جب تک 24 فروری کے بعد قبضے میں لیے گئے سارے علاقے لوٹا نہیں دیتا اس سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
انمول باتیں،
شروتاؤ کارکرم انمول باتیں لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ کارکرم میں ہم ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی دوارا اپنی کلاس میں بیان کی گئی پاٹھ دائک باتوں اور حدیث کے سمبندھ میں ان کے وشلیشن پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے اسی کے اگلے بھاگ میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ کبھی بھی اجانیوں کے بیچ میں ترک پورن اور وویک پورن بات نہ کرو، کیونکہ یہ اس وویک پورن بات کے ساتھ انیا ہے۔ कभी ऐसा भी होता है, कभी ये भी होता है, कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए लालायित है, कुछ समझना चाहता है। आप उससे एक बात कहते हैं, कोई समझदारी भरी बात या उपदेश पर आधारित बात उससे कहते हैं, ये उस व्यक्ति की भी सेवा है और उस तर्कपूर्ण बात की भी सेवा है। कभी ये होता है कि आपके सामने ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं जो अलग ही प्रकार के हैं, अर्थात ये कि वो विवेकपूर्ण बातों को समझने में सक्षम नहीं है या समझना ही नहीं चाहते। आप उनसे कुछ भी कहते हैं तो वो आपकी बात को ठुकरा देते हैं, अपशब्द कहने लगते हैं। कभी ये भी होता है, इंसान कोई महत्वपूर्ण बात और विवेकपूर्ण बात ऐसे लोगों के बीच कह देता है जो उस बात को सुनने के योग्य नहीं है। यदि बार बार वही बात इस प्रकार के लोगों के बीच कही जाए तो उस बात का महत्व भी खत्म हो जाएगा और सुनने वाले इस बात को मानेंगे भी नहीं। सुझाव दिया गया है कि ये काम आप कभी न करें। जब समझदार लोग बैठे हों तो उनके बीच में समझदारी की बातें और विवेकपूर्ण बातें करने का अवसर हाथ से न जाने दो। यदि किसी ने ऐसा किया तो ये समझदार लोगों पर अत्याचार है। यदि आपने वहां विवेकपूर्ण बातें नहीं की तो मानो आपने उन पर अत्याचार किया है। योग्य का मतलब यह है कि वो लोग जो सुनने और समझने की भी क्षमता रखते हैं और सीखने के भी इच्छुक हैं। अगर वो सीख नहीं रहे तब भी आपके कहते ही पूरे ध्यान से बात सुनने लगते हैं। इस स्थिति में विवेकपूर्ण बात दूर तक फैलती है। यहाँ पर अगर आपने समझदारी की बात नहीं की तो मानो आपने अत्याचार किया है। कभी भी अत्याचारी के अत्याचार में हाथ न बटाइए। यदि आपने ये काम किया तो अपनी महानता से हाथ धो बैठेंगे। पैगम्बर इस्लाम के परिजनों से जो शिक्षाएं मिली हैं उनमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा यही है। एक बिंदु ये है कि जो मार्गदर्शक बात हो वो तो सत्य और सही बात होती है। इस रास्ते पर चलना जरूरी होता है। कोई चीज ऐसी भी होती है जिसके बारे में पता है कि वो गलत है, उससे परहेज करना जरूरी होता है। जब कहीं ये स्थिति हो कि पूरी तरह स्पष्ट न हो कि वो सही है या गलत, तो वहाँ पर कभी भी निश्चय के साथ कोई राय न दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब वो अवसर आएगा कि कोई उस बात पर अमल करे और उसे प्रयोग करे तो ईश्वर उसकी मदद करेगा।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के साथ हाजिर हैं कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। ओमान और ईरान के संबंध, अमेरिका में परवान चढ़ता गंज कल्चर और कपिल सिब्बल का कांग्रेस से मोह भंग, ये वे विषय हैं जिनको आज की चर्चा में हम शामिल करने जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरे देशों के दबाव के बावजूद ओमान ने ईरान के साथ अपने संबंधों को अभी तक प्रभावित नहीं होने दिया है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
अरब देशों में ओमान वो देश है जो सुलह कराने, मध्यस्थ की भूमिका निभाने और निष्पक्ष रहने में मशहूर है। ओमान का क्षेत्रफल 3,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है और वहाँ की जनसंख्या लगभग 50,00,000 है। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र के 3 महत्वपूर्ण देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और यमन के साथ उसकी सीमाएं मिलती हैं। ओमान की नीति संकटों के समाधान, तनावों को कम करने और मध्यस्थ की भूमिका निभाने की रही है। यमन के संबंध में उसने जो नीति अपना रखी है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। ओमान एक महत्वपूर्ण अरब देश है जिसने 7 वर्षों के दौरान कई बार युद्धरत यमन गुटों की मेजबानी की है। इस समय यमन और सऊदी अरब के मध्य जो 2 महीने का युद्ध विराम चल रहा है उसमें भी ओमान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ एक बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि ओमान पूरी कोशिश करता है कि उसकी विदेश नीति एक स्वतंत्र देश की रहे और उसकी विदेश नीति किसी भी देश की नीति से प्रभावित न हो। इसी आधार पर वर्ष 2017 में जब सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर से संबंध विच्छेद कर लिया था तब भी ओमान ने कतर से संबंध नहीं तोड़ा, जबकि उस पर कतर से संबंध तोड़ने के लिए भारी दबाव था। ओमान के इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और उसने तेहरान के साथ अपने संबंधों को दूसरे देशों के दबावों व नीतियों से प्रभावित नहीं होने दिया है। सऊदी अरब जैसे देशों के विपरीत ओमान ईरान को अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले देश के रूप में नहीं देखता, बल्कि वो ईरान को क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित करने वाले देश के रूप में देखता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात जैसे कुछ देश ईरान को दूसरे अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले देश के रूप में देखते हैं और इसी निराधार चीज को आधार बनाकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और बहरीन ने वर्ष 2016 में ईरान से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए, परंतु ओमान ने इन देशों की नीतियों का अनुपालन व अनुसरण नहीं किया। रोचक बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात ऐसी स्थिति में ईरान पर अरब देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं, जब खुद दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में न केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं बल्कि वहां अपनी कठपुतली सरकार स्थापित करना चाहते हैं। 26 मार्च वर्ष 2015 से सऊदी अरब ने सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना यमन पर अपना पार्श्विक हमला आरम्भ कर रखा है। उसके इन पार्श्विक हमलों में 10,000 यमनी मारे जा चुके हैं। मारे जाने वालों में ध्यान योग्य संख्या बच्चों और महिलाओं की है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात यमन में जो कुछ कर रहे हैं वो दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं तो क्या है। बहरहाल ओमान के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और ये संबंध न केवल दोनों देशों बल्कि क्षेत्रीय देशों के भी हित में है।
अमेरिका में आए दिन निर्दोष लोग गोलियों का निशाना बनते रहते हैं। लंबे समय से जारी इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। एक रिपोर्ट लेकर उपस्थित हैं रविश जैदी।
टेक्सास में स्कूली बच्चों पर अंधाधुन गोलियां बरसाने वाला 18 वर्षीय हमलावर युवक सल्वाडोर रामोस ने अपने 18वें जन्मदिवस के मौके पर 2 बंदूकों को कानूनी तौर पर खरीदा था। उसने पहली गोली अपने घर में ही अपनी दादी को मारी और उसके बाद वो रॉब एलिमेंट्री स्कूल जाता है, जहां 5 से 10 साल के स्कूली बच्चे अपने सेमिस्टर के अंतिम दिन एकत्रित हुए थे। रामोस वहां अंधाधुन गोलियां बरसाने लगता है। जब गोलियां चलना बंद होती हैं, तब इस साल की अमेरिका की सबसे भयावह तस्वीर सामने आती है। घटना स्थल से धुआं तो छट जाता है, पर 24 मई 2022 मंगलवार का दिन अमेरिका के इतिहास में एक काला धब्बा लगा गया। इस गोलीबारी में अब तक 18 मासूम छात्रों समेत 21 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घायलों को एम्बुलेंस और स्कूल की बसों के जरिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। कई घायलों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। टेक्सास के गवर्नर का कहना है कि हमलावर युवक सल्वाडोर रामोस भी पुलिसकर्मियों द्वारा उसे काबू में करने के लिए चलाई गई गोलियों से मारा गया है। وائٹ ہاؤس سے کانگریس تک پرتکریاؤں کا آنا جاری ہے.
What are we doing?
ابھی تک اس دردناک گھٹنا سے سمبندھت فوٹیج کو جاری نہیں کیا گیا ہے.
Beautiful, innocent, second, third, fourth graders.
امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے اس گھٹنا پر دکھ ویکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کچھ ابھیبھاوک ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. ماتا پتا جو کبھی پہلے جیسے نہیں رہ جائیں گے. اپنے بچے کو کھونا اپنی آتما کے ایک حصے کو کھونے جیسا ہے. میں پورے راشٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے پرارتھنا کریں, ان کے لیے اس اندھیرے وقت میں مضبوطی دینے کی پرارتھنا کریں. بہرحال جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے اس نے ایک بار پھر امریکی نیتاؤں کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا ہے. پیسے کے لیے ہتھیاروں کی بکری انسانوں کے خون کو پانی کی طرح بہا رہی ہے. وہیں گھٹنا کی تصویروں کو پرکاشت نہ کرنے کے پیچھے عام لوگوں کو منوویگیانک چوٹ سے سرکشت رکھنا بتایا جا رہا ہے. سوال یہی ہے کہ اگر تصویروں کی جگہ ہتھیاروں کی بکری پر پابندی لگی ہوتی تو آج نہ یہ دردناک گھٹنا ہوتی اور نہ ہی اتنی بڑی سنکھیا میں ماؤں کی گود سونی ہوتی. نیو یارک سے آئی آر آئی بی کے لیے کامران نجف زادے کی رپورٹ.
اور شوتاؤ, اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا. کپل سبل نے سماجوادی پارٹی کے مادھیم سے راجیہ سبھا جانے کا من بنا لیا ہے. نئی دلی سے شمشاد کاظمی کی رپورٹ.
کانگریس کے ورشٹھ نیتا ایوم پورو کیندریہ منتری کپل سبل نے کانگریس چھوڑ دی ہے اور آج انہوں نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر راجیہ سبھا کے لیے اتر پردیش سے نامانکن داخل کیا جنہیں سماجوادی پارٹی کا سمرتھن پراپت ہے. انہوں نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں سپا ادھیکش اکھلیش یادو کی اپستھتی میں راجیہ سبھا چناؤ کے لیے نامانکن پتر داخل کیا. کپل سبل نے نامانکن داخل کرنے کے بعد پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا,
16 مئی کو میں نے کانگریس پارٹی سے تیاگ پتر دے دیا ہے. ایز این انڈیپینڈنٹ آئی ول بی گوئنگ ٹو دی راجیہ سبھا آفٹر اسکروٹنی اینڈ ایوری تھنگ از ان آرڈر. آئی ایم ڈیپلی ڈیپلی گریٹفل ٹو اکھلیش جی. آئی آلسو وش ٹو کنوے مائی گریٹیچیوڈ ٹو اعظم خان فار دا سپورٹ دیٹ ہی ہیز گیون می, ناٹ جسٹ ناؤ بٹ اوور دی سیورل اوور سیورل ایئرز. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done as an independent member. I have always wanted to be an independent voice in this country.
کپل سبل کانگریس سے ناراض چل رہے تھے اور وہ گروپ 23 میں شامل تھے جس نے کانگریس نیترتو کو لے کر سوال اٹھایا تھا. 5 راجیوں کے ودھان سبھا چناؤں کے نتیجے سامنے آنے کے بعد جس میں کانگریس کو کراری ہار کا منہ دیکھنا پڑا تھا, کپل سبل نے ایک ساکشاتکار میں گاندھی پریوار پر نشانہ سادھا تھا. انہوں نے راہل گاندھی دوارا کیے جا رہے فیصلوں پر بھی سوال اٹھایا تھا اور پوچھا تھا کہ وہ کس حیثیت سے فیصلے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک نردلیہ کی آواز کا ادھک پربھاؤ رہے گا اور ہم وپکش میں رہ کر گٹھ بندھن بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم مودی سرکار کا ورودھ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ورش 2024 کے لوک سبھا چناؤ کے لیے ایسا ماحول بنے کہ ورتمان سرکار کی خامیوں کو جنتا تک پہنچایا جا سکے. اتر پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں پر سپا کے جیتنے کی سمبھاونا پربل ہے. ابھی 2 انیہ پرتیاشیوں کے نام جلد گھوشت کیے جائیں گے. ورشٹھ ادھیوکتا کپل سبل نے سپریم کورٹ میں سپا نیتا اعظم خان کی ضمانت کے لیے پیروی کی تھی. کپل سبل ایسے 5ویں بڑے نیتا ہیں جنہوں نے آر پی این سنگھ, اشونی کمار, ہاردک پٹیل اور سنیل جاکھڑ کے بعد اس سال کانگریس کو الوداع کہا ہے. اتر پردیش کی 11 راجیہ سبھا سیٹوں پر ہونے والے چناؤ میں بھاجپا کو 7 اور سپا کو 3 سیٹیں ملنا طے ہیں. 15 راجیوں میں راجیہ سبھا کی 57 سیٹوں کے لیے 10 جون کو متدان ہوگا. شمشاد کاظمی, ریڈیو تہران, دلی.
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अभी आपने राजनैतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें अवश्य बताइएगा। आज बुधवार है, जिस दिन हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाते हैं आजकल, किंतु उससे पहले पेश है एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम शौर्य गाथा।
शौर्य गाथा।
दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा की कन्नी कड़ी के साथ उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिज़वी का सलाम स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में हम सद्दाम द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको ईरान पर थोपे गए 8 वर्षीय युद्ध के बारे में विभिन्न आयामों से बताते आ रहे हैं। किसी भी युद्ध में विजय की निशानियों में से एक निशानी आक्रमण करने वाले के इरादे और उसके लक्ष्यों को समझना है। अल जजीरा समझौते को फाड़कर सीमावर्ती विवाद को मुद्दा बनाकर युद्ध करने से सद्दाम का मुख्य लक्ष्य ईरान की नवगठित इस्लामी सरकार को गिराना या फिर कम से कम ईरान के टुकड़े करना था।
ईरान पर हमला करने से पहले इराक के तानाशाह सद्दाम ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम ईरान के विभाजन से बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे। सद्दाम ने आगे कहा कि अगर ईरान हमारे साथ दुश्मनी रखता है तो हर इराकी ही नहीं बल्कि हर अरब नागरिक ईरान के टुकड़े टुकड़े होने की इच्छा करेगा। इसी संदर्भ में इराक के तत्कालीन विदेश मंत्री तारिक अजीज ने कहा था कि एक बड़े और एकल ईरान से बेहतर कई छोटे छोटे ईरान होंगे। उन्होंने कहा कि हम ईरान के भीतर विभिन्न जातियों के विरोध और विद्रोह का समर्थन करते हैं। हमारा पूरा प्रयास ईरान के टुकड़े टुकड़े करना है।
एक पश्चिमी टीकाकार एंथनी एच कॉट्समैन का कहना है कि ऐसा लगता है कि नई क्रांति के स्वामी एक देश पर हमले के प्रभाव की इराक ने सही समीक्षा नहीं की थी। सद्दाम ने न जाने क्यों ये सोच लिया था कि ईरान पर उसका हमला इस देश के टुकड़े होने का कारण बनेगा। इराक के कई नेताओं ने अपने साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि ईरान पर उनके हमले का परिणाम आयतुल्लाह खुमैनी के खुले समर्थन के रूप में सामने आएगा।
ईरान पर हमले के बारे में इराकी इंटेलिजेंस के तत्कालीन प्रभारी वफीक अल सामिराई कहते हैं कि 22 सितंबर 1980 को 12 बजे इराकी वायुसेना के 192 युद्धक विमानों ने ईरान के भीतर अपने लक्ष्यों पर हमले किए। जिस समय इराकी वायुसेना के युद्धक विमान ईरान के भीतर अपने लक्ष्यों को भेदने में लगे हुए थे, उसी समय सद्दाम ऑपरेशन कक्ष में प्रविष्ट हुए। उसी समय इराक के तत्कालीन रक्षा मंत्री अदनान खैरुल्ला ने सद्दाम से कहा था कि श्रीमान, हमारे जवानों ने 20 मिनट पहले हमला आरंभ कर दिया है। इसके जवाब में सद्दाम ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर ईरान की कमर टूट जाएगी।
हालांकि सद्दाम के दावे के विपरीत ईरान की कमर तो नहीं टूटी, बल्कि देश की जनता के कड़े प्रतिरोध ने ईरान को बहुत मजबूत कर दिया और वो मजबूत होकर उभरा। स्वर्गीय इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी युवाओं ने सद्दाम की नाक इस तरह से रगड़ दी थी कि वो युद्ध के अंतिम समय तक हमेशा इस युद्ध से पीछा छुड़ाने की कोशिशों में लगा रहा। हालांकि सद्दाम को उस समय की दोनों महाशक्तियों का खुला समर्थन हासिल था। युद्ध के दौरान उसको हथियारों की कमी नहीं होने दी गई। हालांकि इसके अतिरिक्त मिस्र, सूडान और जॉर्डन से सैनिक भी इराक भेजे जाते थे।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से एलन फ्राइडमैन कहते हैं कि युद्ध के मैदान में हमारे सैनिक इराकी सैनिकों की टैक्टिक सहायता किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि कभी कभी वे इराकी सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर ईरान के विरुद्ध उसकी सीमा तक जाते थे। यह स्थिति सन 1987 तक जारी रही। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ हॉवर्ड टीचर का कहना है कि अमेरिका ने सद्दाम के साथ वह काम किया जो उसने उस समय तक अपने किसी भी निकटवर्ती घटक के लिए नहीं किया था।
अपनी किताब में टाइमर मैन लिखते हैं कि सद्दाम ने जून सन 1982 को बेल्जियम की एक कंपनी सिकिस्को के साथ $830 मिलियन का एक समझौता किया था। इस समझौते के अंतर्गत भूमि के 50 मीटर के भीतर इराक के अत्याधुनिक जहाजों के लिए 800 पनाहगाहें बनानी थीं। बेल्जियम की इस कंपनी ने 4 वर्षों के दौरान इराक में 17 विमान छावनियां बनाई। इसके अतिरिक्त उसने कुछ सैन्य केंद्रों का भी निर्माण किया था। ईरान के विरुद्ध युद्ध में फ्रांसीसी युद्ध विमान मिराज इन्हीं पनाहगाहों से हमले के लिए निकलते थे।
बेल्जियम के कंसर्शम ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके अकाशात और अल कायम नामक दो परियोजनाओं पर काम करके यहां पर विश्व में फॉस्फेट के सबसे बड़े कारखाने बनाए थे। अमेरिका के एक लेखक और शोधकर्ता टाइमरमैन ने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका ने बगदाद के लिए अपने राजदूत को नियुक्त करने से पहले बगदाद में अपने गुप्तचर केंद्र में एक अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका काम 24 घंटे उसका निरीक्षण करना था। सद्दाम के निकट इस अधिकारी का बहुत महत्व था। किसी भी बड़े हमले से पहले इस अमेरिकी अधिकारी से विचार विमर्श किया जाता था।
एक अन्य लेखक एलन फ्रेडमैन लिखते हैं कि इराक के लिए लगभग रोजाना हथियार भेजे जाते थे। फ्रांस में नेटो की एक छावनी से इराक के लिए हथियार रवाना किए जाते थे। इन हथियारों और सैन्य साजो सामान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस के गुप्तचर विभाग ने 1986 में अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था कि अगर फ्रांस इराक के लिए अपनी सैन्य सहायता को केवल 3 सप्ताहों के लिए रोक देता तो ये देश निश्चित रूप से युद्ध में पराजित हो जाता।
ईरान पर थोपे गए युद्ध के दौरान पश्चिम की ओर से इराक की सैन्य सहायता यहीं पर समाप्त नहीं हुई बल्कि पश्चिम ने सद्दाम को केमिकल हथियार भी उपलब्ध कराए। सद्दाम ने युद्ध के दौरान इन रासायनिक शस्त्रों का खुलकर प्रयोग किया। 1980 से 1988 के बीच सद्दाम द्वारा रासायनिक शस्त्रों के प्रयोग से 1 लाख से अधिक लोग घायल तथा शहीद हुए थे जिनमें सैनिकों के अतिरिक्त ईरान के आम नागरिक भी थे। विशेष बात यह है कि केमिकल शस्त्रों से हमला कई बार किया गया जबकि मानवाधिकारों का दावा करने वालों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार था कि जब रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग इस स्तर पर किया गया हो। ये रासायनिक हमला जनेवा के 1925 कन्वेंशन के विरुद्ध था। ईरानी सैनिकों के अतिरिक्त इन हमलों में सीमाओं पर रहने वाले बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। सरदश्त नगर पर 28 जून 1987 को रासायनिक हमला किया गया था। जिन रासायनिक पदार्थों से सरदश्त पर हमला किया गया था उनकी एक विशेषता ये थी कि उनका दुष्प्रभाव लंबे समय तक जारी रहता है।
आज भी 50,000 से अधिक ईरानी सद्दाम के रासायनिक हमलों के दुष्परिणामों को झेल रहे हैं जिनको विशेष उपचार की जरूरत है। सरदश्त नगर में रासायनिक हमला अपने आप में बहुत ही भयानक व विध्वंसकारी हमला था। इस हमले ने व्यापक स्तर पर तबाही मचाई थी। ईरान का कहना है कि जापान के हिरोशिमा पर किए गए हमले के बाद ईरान का सरदश्त नगर केमिकल हमलों का पहला शिकार हुआ। इसके अतिरिक्त फरवरी सन 1987 को हलबचे पर भी रासायनिक हमला किया गया। इस हमले में इराक के कुर्दिस्तान के कम से कम 5,000 लोग मारे गए जबकि 7,000 से अधिक लोग घायल हुए।
हलपचे में जिस प्रकार का रासायनिक हमला किया गया, विभीषिका के हिसाब से उसकी तुलना हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों से की जा सकती है। 8 वर्षों तक लगातार प्रतिरोध करने के बाद ईरान को युद्ध में सफलता हासिल हुई। राष्ट्रसंघ ने भी ईरान पर हमले में सद्दाम को ही दोषी पाया था। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव का कहना है कि 8 वर्षों तक लगातार विश्व की दोनों महाशक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कभी भी ईरान पर हमले के मामले में इराक को दोषी सिद्ध नहीं होने दिया। इस दौरान वे केवल दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम की मांग ही किया करते रहे।
जब राष्ट्रसंघ के तत्कालीन महासचिव से ये पूछा गया कि थोपे गए युद्ध के दौरान ईरान ने जो काम किया, क्या वह प्रतिरक्षा नहीं था, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, किसी देश पर हमले के समय जो काम किया जा सकता था वही ईरान ने भी अंजाम दिया। ईरान ने विजय हासिल की, उसने अतिक्रमण के मुकाबले में जो प्रतिरोध किया वह सम्मानीय है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। सैयद मिसम और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस विषय पर पेश किए गए अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने हर ईरानी वर्ष की तरह इस साल को भी एक नए नारे के साथ नया नाम दिया है। इस साल भी ईरानी नववर्ष यानी नवरोज के मौके पर इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने नारे के तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय चुना। पिछले कुछ वर्षों में सर्वोच्च नेता ने नववर्ष के नारे को बुनियादी तौर पर पैदावार को किसी शर्त या खासियत के साथ केंद्र में रखा है। आयतुल्लाह अल-उज़्मा खामनेई इस बारे में कहते हैं कि पैदावार को केंद्र में रखने की वजह यह है कि पैदावार देश की आर्थिक मुश्किलों के हल की कुंजी है। पैदावार दरअसल देश के लिए आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं से बाहर निकलने का असली रास्ता है। यही कारण है कि इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने इस साल का नारा रोजगार पैदा करने वाला नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन दिया है। हमने अपने इसी विषय के कार्यक्रम की पहले भाग में आपको बताया था कि ईरान में कृषि क्षेत्र में कितनी क्षमताएं और संभावनाएं पाई जाती हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में हम सीमेंट उद्योग में ईरान की उत्पाद क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे।
उत्पादन के लिए उच्च क्षमता वाले आर्थिक क्षेत्रों में से एक ईरान का औद्योगिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशेषताएं हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। वर्ष 2018 में तत्कालीन ईरान के उद्योग, खनन एवं व्यापार मंत्री रजा रहमानी कहते हैं कि 40 साल पहले इस्लामी क्रांति के सफलता के समय पूरे देश में 1503 औद्योगिक इकाइयां थीं, जिसमें आज की तारीख में 57% की वृद्धि हुई है और ये संख्या इस समय पूरे ईरान में 85,076 औद्योगिक इकाइयों तक पहुंच गई है। ईरान के उद्योग, खनन एवं व्यापार के क्षेत्र में ये सभी औद्योगिक इकाइयां पूरी सक्रिय हैं। इसी तरह खनिज इकाइयों के क्षेत्र में आज हमारे पास पहले की 195 इकाइयों के मुकाबले में 6386 सक्रिय इकाइयां हैं, जिनमें 32 गुना वृद्धि हुई है। वहीं औद्योगिक नगरों की संख्या इस्लामी क्रांति की शुरुआत में 3 नगरों पर आधारित थी, लेकिन इन 40 वर्षों में उनकी संख्या बढ़कर 978 औद्योगिक नगरों तक पहुंच गई है, जिनमें से 858 औद्योगिक नगर पूरी तरह सक्रिय हैं और बाकी बचे अन्य ट्रेड शहरों की जमीनों के लिए मंजूरी दे दी गई है और संचालन में डाल दिया गया है। ये दर्शाता है कि ईरान की इस्लामी व्यवस्था वाली सरकार औद्योगिक नगरों के निर्माण को लेकर कितनी गंभीर है और लगातार देश के आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर रही है।
ईरान के पूर्व उद्योग, खनन एवं व्यापार मंत्री रजा रहमानी बताते हैं कि इस्लामी क्रांति की शुरुआत में खनन क्षमता 19.6 मिलियन टन थी, जो पिछले 40 वर्षों में बढ़कर 735 मिलियन टन हो गई है। ये प्रगति दर्शाती है कि ईरान ने खनन क्षेत्र में अपनी क्षमता में 37 गुना वृद्धि की है। इसी तरह रहमानी बताते हैं कि इस्लामी क्रांति के आरंभ में हमारे पास निर्यात में $500 मिलियन और गैर तेल आयात में $10 बिलियन थे, जो निर्यात से 20 गुना अधिक था। लेकिन इस्लामी क्रांति की महान सफलता के 40 साल बाद आज ईरान का गैर तेल निर्यात आयात के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। ये सब ऐसी स्थिति में है कि जब ईरान पर इस्लामी क्रांति के बाद से अमेरिका समेत कई उसके सहयोगियों ने कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके बावजूद ईरान इस समय विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि सन 2022 के अंत तक ईरान की अर्थव्यवस्था बढ़कर $1573 अरब हो जाएगी। वर्तमान समय में ईरान की अर्थव्यवस्था पोलैंड, हॉलैंड, मिस्र, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से आगे है। सन 2021 के क्रय शक्ति सूचकांक के आधार पर ईरान विश्व में आर्थिक शक्ति के हिसाब से 20वें स्थान पर पहुंच गया है।
वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर सीमेंट का उत्पादन 4100 मिलियन टन के बराबर था। वर्ष 2018 के बाद से यही आंकड़ा बना हुआ है। अकेले चीन ने 2200 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया, जो वर्ष 2020 में उत्पादित कुल सीमेंट का 53% है। चीन के बाद भारत ने बड़े अंतर से 340 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन किया है। सीमेंट उद्योग की वर्ष 2020 की विश्व रैंकिंग में तुर्की का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 16% बढ़ा और 66 मिलियन टन की सीमा तक पहुंच गया। इस वृद्धि के साथ तुर्की वर्ष 2020 में 6 स्थान पर पहुंच गया, जिसके बाद से तुर्की क्षेत्रीय बाजार को पूरी तरह अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर सीमेंट के उत्पादन में इस्लामी गणतंत्र ईरान की बातें करें तो वर्ष 2020 में ईरान में सीमेंट का उत्पादन वर्ष 2019 के मुकाबले में समान था और इसकी मात्रा 60 मिलियन टन थी और विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर था। पहलवी युग के अंत में ईरानी सीमेंट उत्पादन प्रति वर्ष 7.7 मिलियन टन था, जो 80 के दशक में 17 मिलियन टन तक पहुँच गया था, लेकिन इस उद्योग के विकास का चरम वर्ष 1980 के दशक में शुरू हुआ और वर्ष 2014 में सीमेंट का उत्पादन अपने रिकॉर्ड स्तर पर 70 मिलियन टन पर पहुंच गया।
आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों की रिपोर्टों के मुताबिक ईरान में करीब 88 मिलियन टन की क्षमता वाली करीब 76 सीमेंट और क्लिंकर कंपनियां हैं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका पत्थर, लौह अयस्क, जलोढ़, माल मिट्टी, ज्वालामुखी की राख, लावा आदि हैं। सीमेंट उद्योग के सभी कच्चे माल की आपूर्ति देश के भीतर से ही की जाती है। इस्लामी गणतंत्र ईरान को वर्ष 2012 में दुनिया में चौथा और 2015 में सीमेंट उद्योग में दुनिया में छठा स्थान दिया गया था, लेकिन फिर दुनिया में 10वें स्थान पर आ गया और वर्ष 2020 में फिर से 3 पायदान छलांग लगाते हुए दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि सीमेंट उत्पादन वर्ष 2020 के पहले 9 महीनों में जो 53 मिलियन और 574,000 टन था, उसमें वर्ष 2021 के पहले 9 महीनों में 9.1% की कमी के साथ 48 मिलियन और 697,000 टन के पास पहुंच गया। ये ऐसी स्थिति में है कि जब उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश की सीमेंट उत्पादन क्षमता वर्तमान में 80 मिलियन टन है, वहीं इन सबके बीच ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि निर्माणाधीन क्षमता रुकी हुई क्षमता का उपयोग करते हुए वर्ष 2023 के आरंभ तक सीमेंट उत्पादन प्रति वर्ष 90 मिलियन टन से अधिक होने की उम्मीद है। सीमेंट उद्योग के विकास के लिए रणनीतिक योजना के अनुसार क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के पहले रैंक के रूप में 120 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया में तीसरा स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
ईरान में सीमेंट उत्पादन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा उपयोग नहीं किया जाता है। घरेलू निर्माण में सुस्ती और सरकार के विकास बजट में कमी इसका एक कारण है। सीमेंट की घरेलू खपत 55 मिलियन टन प्रतिवर्ष है, जो पिछले 2 वर्षों में घटी है। ऐसी स्थिति में जब ईरान के पास 80 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन की क्षमता है और यदि घरेलू खपत प्रतिवर्ष 55 मिलियन टन है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिवर्ष लगभग 25 मिलियन टन सीमेंट निर्यात करने की क्षमता साफ साफ दिखाई देती है, जिस क्षमता के जरिए हमें देश में विदेशी मुद्रा को ला सकते हैं और ईरान की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में ईरान के सीमेंट निर्यात में तेजी से गिरावट आई है। इराक द्वारा ईरानी सीमेंट के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने ईरान को अपनी सीमेंट उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने से रोक दिया, क्योंकि इराक ईरानी सीमेंट निर्यात का मुख्य केंद्र है, जहां लगभग 50% ईरानी सीमेंट इराकी बाजारों की आपूर्ति करती है।
लेकिन घरेलू
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रमों के बारे में आपके विचारों सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अपने सुझाव आप हमें ज़रूर भेजिए। आपके विचारों से और आपके सुझावों से कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में हमें मदद मिलती है। तो श्रोताओ, इसी के साथ ये कार्यक्रम भी यहीं पर समाप्त होता है और यहीं पर हमारी ये सभा भी समाप्त होती है। अगली मुलाकात तक हमें अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।